भगवान प्रेमाधीन है। भगवान से जो प्रेम करता है और जिस भाव से प्रेम करता है, जैसा मानकर प्रेम करता है, ठीक उसके लिए वे वैसे ही बन जाते हैं। वे सत्य हैं, नित्य सत्य हैं, इसलिए उस प्रेमी की मान्यता के अनुसार अब उसी रूप में अपने सत्य स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। तो जिनकी दृष्टि में वो स्वरूप सत्य नहीं, उनके लिए नहीं, परंतु जो मानते हैं उनके लिए वो कल्पना की वस्तु नहीं, सत्य सत्य ही है। तो भगवान खेलते हैं और ये देखते हैं कि दोनों चीजें, तो उनकी लीला को, खेल को देख देख कर आनंद प्राप्त हो, और दूसरे वात्सल्य रस है ना, मैं कहाँ तक होशियार हो गया है, समझदार कुछ हुआ कि नहीं, कुछ इसमें ताकत आई कि नहीं, ये भी माता और मातृस्थानीय गोपियां देखती रहती हैं, बल देखती हैं, बुद्धि देखती है कि अभी तक भूल ही रहा है, कुछ थोड़ी अकल आई, वैसे ही राग कुछ ताकत भी आई तो नचा नचा कर नए नए नाच नचा नचा कर नाचने की ताकत देखती है, आमोद लेती है। तो देखती है कुछ ताकत समझदार हुआ कि नहीं, तो बोली देखो वो खड़ाऊ पादुका पड़ी है बाहर बाबा के लिए, तो सोचा पादुका समझेगा कि नहीं, ये पादुका क्या चीज है। तो गए ठीक ले आए, बोले समझदार हो गया, समझने लगा खड़ाऊ क्या चीज है। फिर मन में आप देखें इसका बल जांचे कुछ ताकत आई कि नहीं, तो खड़ाऊ की छोटी चीज है। बोले अच्छा ये धान वान नापने की होती है ना अनुमान, क्या कहते हैं उसको, दो ऊपर सिर बटखड़े भी होते हैं और वो पाई क्या कहते हैं, पायली पाई कहते हैं। तो कहा अनुमान ले आओ अनुमान। तो सोचा कि ये अनुमान समझेगा कि नहीं क्या बात है, अरे खड़ाऊ तो फिर भी देखता अनुमान उन्मान को क्या पता, तो जा करके ठीक से और वो अनुमान भी ले आया, पायली बटखड़ा भी ले आया। तो सोचा भाई ये तो और बुद्धिमान हो गया, अब बल देखना। तो बोले देखो देखो लाला आपकी वो ये देखो पीड़ा अपना छोटी सी पीढ़ी रही है, बड़ा बीड़ा थोड़ी था, ये भी भय है कहीं ये बल करने लगे हाथ में आ जाए और देखे मेरी हेठी हो जाएगी और किसी भारी चीज को उठा ले और लग जाए, तो ये भय भी है वात्सल्य है ना। तो बोले छोटी सी पीढ़ी रही, बोले जरा लाला उसको उठा तो ले आओ। अब लाला गए उठा ले आए पीढ़ी को, अब तो उठाने में कुछ तकलीफ तो हुई, जरा बड़ा था ना तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ उसे कैसे, तो यूं छाती लगा करके उठाया, लगा कर किस तरह से डेली पार होना मुश्किल, किसी तरह से हुआ आया ले आए। इस प्रकार कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ रात दिन ये आनंद कोलाहल मचा हुआ है नंद बाबा के घर में और तमाम गोकुल में। गोकुल में आजकल दूसरी बात नहीं है, बच्चों में वही बात, बूढ़ों में वही बात, बूढ़ी स्त्रियों में वही बात, तरुणियों में वही बात, लड़कियों में वही बात, केवल श्याम सुंदर ही सबके जीवन में समा गया। तो वो सूरदास जी कहते हैं ये भगवान का जो मधुर मधुर ये लीला चरित्र है, इसके सामने अमृत क्या चीज है, ये जैसा मधुर है ऐसी मधुरता उस अमृत में कहाँ है। और कहते हैं भी दूसरे सुख की तो बात के सुख के सामने और सुख रंग की कौन इच्छा करे, मुक्ति हूँ नौन सी खारी लागे। यहाँ के बीच में मुक्ति आ जाए दोस्त भंग हो जाए, तो मुक्ति देवी को अलग रख देते हैं बांध करके कि मुक्ति उक्ति आ जाए कहीं, ब्रजमंडल में जहाँ श्याम सुंदर है वहां मुक्ति नहीं आई, लोग कहेंगे तब तो फिर बंधन में ही रहे। ये रहस्य है समझने का, जगत का बंधन जहां पर है वहां तो श्याम सुंदर की लीला देखने में मिलती नहीं, और जहां श्याम सुंदर की लीला है वहां जगत से तो मुक्ति हो गई। अब बंध गए श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर को आकर के कोई मुक्ति खोल दे, ऐसी किसी मुक्ति में ताकत नहीं। श्याम सुंदर के स्वकृत बंधन को अपने ही बांधे हुए उनके प्रेम बंधन को कोई भी मुक्ति आकर खोल दे, ऐसी किसी मुक्ति में ताकत नहीं। इसलिए श्याम सुंदर के प्रेम राज्य में मुक्ति नहीं आती, और कहीं मुक्ति उसके बीच में आने लगती है तो हटाए देते हैं उसको। मुक्ति हुई नौन सी खारी लागे, बोले मीठा मीठा खा रहे थे बीच में ये खारी चीज कहाँ से आ गई, हटा इसको। तो मुक्ति को हटा देते हैं, मुक्ति की ओर ताकते नहीं, मुक्ति निरादरी भक्त लुभाने उसका आदर भी नहीं करते, तिरस्कार करते हैं, हटो यहां से विघ्न आ गया। मुक्ति को ये प्रेमी लोग विघ्न मानते हैं भला, तो ये बात हम लोगों के समझ में तो यूं नहीं आती कि हम लोग तो जगत के बंधन में है ना, इसलिए बार बार जगत के दुख आते हम लोगों पर, दुखों से अभिभूत रहते हैं, तो दुख छूटने की इच्छा होती है, और उन प्रेमियों के पास जगत के दुख तो आते नहीं, निरंतर रहता है श्याम सुंदर का अनंत सुख, अनंत लीला सुख, तो उस अनंत लीला सुख से छुटकारा पावे ऐसे अभागे कौन हो, तो मुक्ति वो नाम सीखारी लागे, इस प्रकार मुक्ति भी उनको बुरी लगती, तो लीला हो रही, इन्होंने देखा कि जरा और परीक्षा करें बच्चे के कुछ बलवान हो गया कि नहीं, तो कहते हैं बाहु क्षेत्र कुर्ते स्वान प्रतिमा बंद बोले जरा लड़ावे इनको आपस में, तो किससे लड़ावे, इससे पहलवानी तो देखे पर किससे लड़ावे, तो बाहू जी को बुलाया, तो ये कभी यू भुजा ठोकते कभी पीठ ये ताल ठोकते बजाओ लड़ो कोई हमसे। तो एक दिन की बात है, रोजी होता एक दिन क्या, तो एक गोपी ने कह दिया कि श्याम सुंदर पेड़ से तो बलराम में ज्यादा बल है, उसका नाम ही बलराम है। तो बोले फिर लालिया बोले नाना मेरे से बल ज्यादा कहां से आया, बोले ऋषि हिला दिया। तो बलराम जी हंस पड़े, बलराम जी हंस पड़े कन्हैया की मुद्रा को देख करके, तो बोले अच्छा दो दल बन जा, एक कन्हैया की पार्टी और एक दाऊ की पार्टी, तो अलग अलग दो मंडल हो गए, पहलवान जुटे दोनों ओर से ताल ठोंकने लगे, एक मंडली कहती दाऊ में ज्यादा बल है, दूसरी मंडली कहती नहीं कि कन्हैया में ज्यादा बल, बले न सममन्यु नियम प्राबल्यम दर्शयन्निव ऊर्ध्वाधो भाववासाद्य सर्वा हातयति स्मसः। बोले करो पुष्टि, तो भिड़े सब दाऊ जी के साथ श्याम सुंदर भिड़े, अब नन्ही सी भुजा और निपट पड़े, अब दोनों अपना अपना बल दिखाते, दाऊ अपना बल दिखावे, कभी ये ऊपर आवे कभी वो ऊपर आ, कभी उनको चित डाले और मुकर जा गए, नहीं चित पड़े हम, हार गए नहीं हारे, तुम झूठ बोलते हो, किस प्रकार वो परम मनोहारिणी पहलवानी लीला मल्लक क्रीड़ा होने लगी वहां पर। अब तमाम गोपियां इकट्ठी हो गई हंसाए, हंसी की के फुहारे छूट गए दोनों भाइयों की शोभा, बड़ी अद्भुत, एक परम उज्जवल और एक नवनील नीरद, तो सुंदर मुखमा देते हैं सदा स्फटिक मणिमेव महामरकतः चंद्रमसेव जलदांकुरः पुंडरीकेनेव नीलोत्पलम् हंसेनेव यमुना तरंगः ज्योत्स्ना शकलेनेव तीरकदम्बः। आनंद वृंदावन चंद्र ऐसी अद्भुत शोभा लगी मानो स्वच्छता, एक तरफ उज्ज्वल है ना, एक तरफ नील है श्याम है, मनो स्फटिक मणि के बगल में स्फटिक मणि के साथ महामरकत मणि, स्फटिक मणि दाऊ जी और मरकत मणि कन्हैया, ये तो उज्ज्वल ज्योति, तो स्निग्धता में मनो पूर्ण चंद्र से मंडित जलधर अंकुर हो, बादलों का अंकुर हो, पूर्ण चंद्रमा से सुशोभित, और सुरभि में सुगंधि में सौरभ्य में और सुकुमारता में मानो ये पुंडरीक, पुंडरीक उज्ज्वल श्वेत कमल, श्वेत कमल के साथ नील कमल का विकास हो गया, सुरभि में सुकुमारता में पुंडरीक नेव नीलोत्पलम, ये श्वेत उज्ज्वल धवल कमल के साथ और नील कमल का उदय हो गया हो, बड़ा सुंदर। और सुखमयी चेष्टा में मनोहंस बल्द यमुना चरंगे हूं, और अंग कांति में मनोज्योत्सना खंड से युक्त और तिमिर का अंधकार का अंकुर हूं, ऐसा विचित्र। तो सारे के सारे देख देख करके आनंद मग्न, कभी नाचें कभी गावें कभी खेलें कभी उद्यम करें, इस प्रकार नित्य निरंतर चलने लगा। ये बाल चेष्टा भगवान की दर्शन सदविदान लोक आत्मनोभृत्य वश्यता ब्रजस्योवाह वैहर्षम भगवान बाल चेष्टित ही। भगवान अपनी बाल लीलाओं से भगवान, यह भगवान कह दिया भला कोई भूल न जाए, ये भगवान है, ये सर्वैश्वर्य संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्ववित है, सर्वाधार है, सर्वातीत है, भगवान है। और ये भगवान यहाँ उनकी दृष्टि में कोई भगवान नहीं है, ये बच्चा है खेलता है। और इसीलिए बाल लीला बाल्य चेष्टा, इसका अर्थ ये माया नहीं है। मैया को और मैया स्थानीय गोपियों को भुला नहीं रहे हैं, सचमुच उनके प्रेम से अपने को बहाते हुए उनको बहा रहे हैं। ये उनकी अप्रतिम अतुलनीय प्रेमाधीनता है, भक्त्याधीनता है। ये सारे जगत के सामने, उन योगिंद्र मुनिंद्रों के सामने जिनके चित्त में कल्पना तक इनके नहीं आती, उनको दिखा रहे हैं अपनी अतुलनीय भक्तिवश्यता। तो अब ये नित्य नई नई लालसा जागृत होती है यशोदा के मन में और गोपियों के मन में कि कोई नया नया आनंद फिरने, नया नया खेल फिर हो, कोई नवीन नवीन कोई अभिनय फिर आरंभ हो। तो वो भगवान रात पड़ गई सो गए, पर ये प्रतीक्षा कर रहे हैं नवीन खेल की। तो गोपियों ने आकर के देख अगले तो जग रहे हैं, सोया है आज, और जब तक जग जा रहे हैं सोया सोया ही नाच रहा है, पैरों को पटक रहा है और थोड़ी कर रहा है। तो सवेरा हुआ, आज तो उत्सव है, आज उत्सव है, रोज उत्सव होता है वहां पर। जब से श्री कृष्ण आए तब से नंद रानी का घर और तमाम गोकुल उत्सवमय हो गया, नित्य उत्सव। और सच बात है, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ नित्योत्सव रहता है, और जहाँ भोग रहते हैं वहाँ नित्य रुदन रहता है। भोग जगत में हंसने में भी रोना ही रहता है, और भगवत जगत में रोने में भी हंसना रहता है। ये भेद है इसका। तो रात बाकी थी, बीती, सवेरा हुआ, फिर वही थे। अब दूसरे दिन रात को आज जागरण करना है भैया, बोला हुआ जागरण। कन्हैया के लिए माता मान्यता मान ली, तो इतना वर्ष के दिन इन्होंने जागरण बोल दिया था। इतना वर्ष हमारा उस दिन के एक दिन रात जगा करके विष्णु भगवान नारायण का भजन गाएंगे, उपासना करेंगे। तो रात पड़ गई, देखते हैं कि ये हम लोग तो गाये वाएंगे, अगर ये बच्चा जागेगा तो ठीक नहीं, ये सो भी जाए और हम लोगों का जागरण भी हो। मैया के मन में वात्सल्य है ना, कि कहीं जगता रह गया, नींद नहीं आई इसको तो बीमार हो जाएगा। अब नित्य निरामय भगवान नहीं है यहाँ पर, बीमार होने वाले भगवान हैं। तो क्या करें, बड़ा मन में भाव था कि भाई ये भगवान नारायण की उपासना नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि ये हमारा गोश्त गोश्त जो है इसमें तमाम असुर आबसे रात दिन आते हैं, गोश्त मृदन दुष्टानाम दुष्टानम वृत्तम। तो ये गोश्त जो है ये तो दुष्टों का आवास स्थान बन गया है, दोनों बालकों को छिपा कर रखते हैं, कहीं बाहर भी नहीं जाने देते और इन सब। तो ये तो जाग रहे, इन्होंने देखा सोए सोए में आंगन में बिछा रखा था ना, देखा तो ऊपर देखा कुछ देखा उजाला था, तो खड़े हो गए। खड़े होकर वो मटकी पड़ी थी वहां पर, मटकी में तो मटकी को वो देखा तो मटकी में दिखा चंद्रमा का प्रतिबिंब, आकाश का चंद्रमा उसका उसका प्रतिबिंब पड़ रहा। तो मैया को पकड़ के ले आए, तो चल चल चीज देख। मैया ने कहा क्या है, क्या देख लिया, क्या चीज है? आए बोले मैया देख इसमें क्या है, क्या इसमें वो क्या चीज, क्या गोल गोल हिल रहा है और बड़ा चमक रहा है? तो मैया ने देखा कितना भोला है, देखो इसको ये पता नहीं है कि चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा, बड़ा भोला बच्चा है। तो जननी ने बड़े माँ ने बड़े प्रेम से कहा कि लाला ये चंद्रमा का प्रतिबिंब है। चंद्रमा क्या होता नहीं है? अरे जो आकाश में रहता वो देख चंद्रमा, तो आकाश को भी देखा, वहां भी दिखाई दिया। तो बोले ये वही है जो इसमें है चंद्रमा? बोले हाँ हाँ बेटा वही है। तो पीछे हाथ पीट ताली फिर के नाचने के, बोले मैया निकाल दे इस गदरी में से, निकाल के मेरे हाथ पर रख दे। अब यशोदा मैया हंसने लगी, सारी बड़ी सुंदरियां हंसने लगी। वो बार बार आंचल पकड़ रहा है, बड़ा नटखट है, बोले जल्दी निकाल के दे, देर क्यों कर रही है? माता दूसरी बातों में भुलाना चाहती, कैसे बच्चे को भुला दिया जाए, पर वे तो भूलते नहीं, रोने लगे निकाल के जल्दी। तो पास खड़ी थी प्रभावती उपनंद पत्नी, जिठानी रही है यशोदा मैया। तो ये इसने आके कान में कुछ यशोदा जी से युक्ति सूझी, बोले लोकर। तो वो संकेत पा करके यशोदा जी गई मक्खन भंडार में, और धीरे से लौंडा बड़ा सुंदर माखन का लौंडा सफेद सफेद ये छिपा के ले आई पीठ की तरफ, और शाम सुनने की दृष्टि न पड़े। वो जानती बच्चा क्या देखे, ये नहीं कि अंतर्यामी सब कुछ जानते मारते। तो उनकी नजर बचा करके हाड़ी में डाल दिया मक्खन के लौंडे को, बोले मैया निकाल करी जल्दी, इसी देर हम कहां चली गई थी? मैं अच्छा अभी निकाल, तू रोने लगे तो आंसू आंखों आंखें पहुंच करके, मैं बोले अच्छा दे अभी निकाल दे, क्यों मेरे पास बैठा लिया। और गगरी में हाथ डाल करके मटकी में और मक्खन का लौंडा माँ ने निकाल कर हाथ पर रख दिया, बोले ये ले चंद्रमा तेरे हाथ में। तो गगरी को देखने लगे, देखे इसमें से निकला कि नहीं, तो उनकी अपनी अपना अपनी छाया पड़ गई, और गोपियों ने भी यूं कर लिया तो अंदर दिखा नहीं, बोले अब आ गया हाथ में, अब हाथ में आ गया आपको, बड़े बोले बहुत अच्छा हो गया। रुदंत मंदवे मंथ गगरियां प्रतिरूपने पिंडेन नवनीतेन दुग्धा गर्भधारकम्। अब वो लेकर के नवनीत का लौंडा मक्खनकार भागे, उनके पीछे पीछे यशोदा मैया भागी, गोपिकाएं कहीं बाहर जा करके कहीं गिर उड़ जाए। पर आए तो भीड़ लगी थी, तमाम दरवाजा सटा हुआ था भीड़ से, तमाम गोपिकाएं खड़ी तो बाहर तो जा नहीं सके। अरे पीछे पीछे सब बाप तमाम भाग गई थी ना, तो गगरी अकेली पड़ी खाली पड़ी थी, ये चट से भाग के फिर देखा अंदर, तो उसमें जिसका है अभी ये तो माँ ने धोखा किया, ये तो माँ ने बड़ा धोखा दिया, देखो ना चंद्रमा तो उसके अंदर ही दिख रहा है, कैसे निकाल के दे दिया, झूठ बोलती है। अब वहां महाराज रूठ गए, रूठ गए, रोष आ गया और जमीन पर लौट गए, हाथ पटक पटक कर, पैर पटक पटक कर लगे होने। मैया ने गोद लेना चावल, नहीं नहीं तेरी गोद नहीं आई। किसी प्रकार उठाया समझाया, अरे बोले नारा तू समझ, वो तो इसमें थोड़ा ही है, वो तो आकाश में है। तो बोले आकाश में इसमें कैसे आई, दो होंगे। अरे बोले दो नहीं भैया, ये इसकी चंद्रमा की छाया पड़ती। बोले छाया क्या होती है, दिखता है ना ये तो इसमें। तो ऊपर दिखाया, खाड़ी अजय यशोदा अपने हरी लिए चंदा दिखरावर, रोवत कच बन जाऊ तुम्हारी, देखो धन भरी मैंने जुलावर। दिखा रही है किसी प्रकार, चुप हुए देखने लगे। तो उनके समझ में आई कि मैया कहती तो पर दो हैं, ऊपर भी ठीक दिखता ही है और इसमें भी दिखता ही है, तो दो हैं, एक नहीं दो चंद्रमा है, वहां अलग दिखता है यहां अलग दिखता है। तो बोले तो बोले मैया दो है ना। अरे बोले तुमको बताऊं असली बात क्या है, मुझे बता मैया। अरे वो चंद्रमा उन्द्रमा कुछ नहीं है, बहु मैया दिखता क्या है। बोले तेरा जो मुख चंद्र है ना, तू ऊपर देखता है तो तेरी छाया पड़ जाती है आकाश में, तो तुझको दिखता है, और तू नीचे देखता है तो तेरी छाया पड़ जाती है गगरी में, तो तेरा मुख चंद्र दिखता है। असल में चंद्रमा नहीं है, तेरा ही मुख चंद्र। बोले अच्छा मैया कुछ लोग दिखता तो है ना, ये निकाल के दे और ऊपर ऊपर वाले बुला दे नशे नीचे। तो मन ही मन हरि बुद्धि करत है, माता सो कही ताही मंगावत। बोले मैया देख अब तेरे मक्खन मक्खन से पेट नहीं भरता, मैं तो चंद्रमा को खाऊंगा ये गोल गोल बड़ा अच्छा लगता है। मन ही मन हरि बुद्धि करत है, माता सो कही ताही मंगावत, लागी भूख चंद में खई हूं, देह देह रिस करे बिरधावत। हिस्से बोले भूख लगी है, दूसरी दिन नहीं खाऊंगा चंद्र न खाऊंगा मैं तो। अब बड़ा अठीला, बार बार मैया समझाती, बोले देख भैया देख भैया तू मेवा खा ले, निष्ठान में खा ले, माखन देख तेरे लिए किया सब। बोले नाना आखे मेरे लाल हो, ऐसे आर्य न कीजे, मधु मेवा पकवान मिठाई जो भावे सोई लीजे, सद माखन घित दयो सजायो, अरु मीठो पय पीजे पाल आदि हठ अधिक करो जन। अरे छीजे, बोले बेटा ज्यादा गुस्सा करने से शरीर छीजता है, तेरा खून जलता है। ये पता नहीं कि खून में एक ही है, दो नहीं है यहाँ पर वो मानते नहीं। वो कहते हैं कि मैया ये ऊपर वाला ला के दिया, तू तो कहते ना असली हो तो वो ला के। मैया ने सोचा कि बड़ी भूल की, ऊपर वाला दिखा दिया इसको, समझा बुझा के किसी तरह से देते ऊपर वाला दिखला दिया, बड़ी भूल की। ये भी दिक्कत का नहीं समझ रही हूँ, मैं ही भूल चंद दिख रहा हूँ, ताही कहत मैं खई हूँ, कैसा खाऊंगा मैं तो उसे। माता ने कहा बेटा ये खाने की चीज नहीं, अनहोनी कहूँ भाई कन्हैया, देखी सुनी न बात, ये तो आई खिलौना सबको खान कहत कही का। अरे ये तो खिलौना है, खाने के लिए खिलौना है तो खेलूंगा नहीं, तो खेलूंगा खाऊंगा नहीं, खिलौना ही सही, ये तो देना पड़ेगा जाके दे। बस सुंदरियों ने देखा, सब ने देखा, तो क्या करे, उन्होंने क्या किया, बोले अच्छा कुछ तो करो। तो ये पियो नहीं, पात्र में एक निर्मल जल भर और बोले चंदा इसमें आ जाओ, चंदा इसमें आ जाओ, आह्वान करने लगी बार बार, जिसमें तो सुख बोधती आग चंद्र तो ही लाल बुलावे, मधु मेवा पकवान मिठाई आपन खई है तो ही खवावे, हाथ ही पर तो ही लीने खेले, नींद भर में बैठावे, जल बासन कर ले उठावत, याही में तू तन धरी आवे। चंदा इसमें आ जा, चंद्रमा तू इसमें आ जा, अब वो खाली भर बर्तन रखा था उसने, उसी पर दिखने लगा मिर्जा जैसे चंद्रमा आ गया, ले ले मोहन चंदाले ले ले कमल नयन बले जान सुचते हुए नीचे ने कुछ थे चंद्रमा ले ली। अब तो बोले चंद्रमा अब तो अपना ही हाथ जाता है ना, चंद्रमा अब मिल जाएगा। जल पात्र में साफ साफ बर्तन में दिखने लगा चंद्रमा। अब उतरे गोद से उतर करके चंद्रमा को लेने के लिए पकड़ने के लिए और अपने कोमल कोमल हाथों को बर्तन में डाला, तो यूं डाला यूं किया कि चंद्रमा के परछाई वो विलीन हो गई। तो इतने में देखा चंद्रमा तो ये तो नहीं पर हाथ में आ गया होगा, दिखता तो नहीं है, दूर गए। उधर मेरे ऊपर देखे तो योग माया ने देखा कि अब ज्यादा देर तक ठहरना ठीक नहीं, तो एक बादल का खंड मेघ खंड ऊपर इसकी एक और तरह से भी आती है, मेघ खंड आया एक बादल का खंड और उसने चंद्रमा को ढक लिया। तो देखा मैया ने उसने कन्हैया ने कि चंद्रमा तो ऊपर भी नहीं। तो बोले मैया वो गया कहां चला गया, मैं ऊपर दिखता नहीं, इसमें दिखता है, मेरे हाथ में आया नहीं। लाला बताऊं, बोले बता। बोले तेरे दिन से पाताल में भाग गया। अब वो तो छुटकारा दिलाना है ना, झलकाएगा ला कहीं से। बोले तू लाला पकड़ना चाहता था ना, बोले हाँ पकड़ना चाहता ही था। बोले तेने हाथ डाला कि वो डर के मारे पाताल में भाग गया। तो बोले मैया पाताल कहाँ है, पाताल क्या है, बता मुझे तो, उसको पाताल से लाना है। तो मैया बोली चल मेरे साथ, पाताल की लंबी कथा है, लंबी कहानी तुमको कहानी सुनाऊंगी, तुम मेरे साथ चल ये कहानी सुनाऊंगी। तो मैया से पाताल की कहानी सुनने के लिए चली। ये भगवान श्याम सुंदर हैं, चले गए मैया के साथ। मैया ने सोचा कि उसको कहानी सुनाते सुनाते नींद आ जाएगी, तो आज तो सो जाएगा, फिर कल देखा जाए कोई और युक्ति सोचेंगे। ये चंद्रमा के कई कई लीलाएं हैं, ये आज की एक लीला। ये आज तो अब कन्हैया पाताल की कहानी मैया से सुनने के लिए चले गए और मैया कहानी सुनाने लगी। अब वो जागरण करने के लिए जो स्त्रियां आई थी ना गोप सुंदरियां, अब वो इनको सुला करके नींद आ गया। तब भी मैया बैठी सबकी ले रही है, उनसे कहा कि तुम एक काम तो करो, यहां क्या खड़ी देख रही है, अरे आ रही हो आई हो जागरण करने के लिए कि यहां खड़ी खड़ी देखने के लिए। मैया ने डांटा बहुत सुंदरियों को, कहा जाओ नारायण के मंदिर में जाओ, नारायण का मंदिर रहा नंद बाबा के घर में, नारायण की उपासना होती बड़ी भक्ति के साथ नंद बाबा के यशोदा मैया के नारायण रहित देश, जब कभी संकट पड़े तो पड़े नारायण और संकट से नारायण छुड़ाते हैं, ये नियम है। तो ये गोपियों का मन करे नहीं, उन्होंने कहा जागरण तो इसीलिए तो हम आई थी, कोई जीत जाने थोड़ी आई थी यहाँ पर। और नारायण को मुझे तुम करो अपनी मन ही मन कहा गोपियों ने, मैया जा निकलो, तो निकलना ही पड़ते बीच बीच में, तो देखना देख ही लेती आ गए किसी बहाने ही बाहर आ गया और मैया कहीं भेज नहीं थे वापस लौट आ गए, जब तो देखनी मुश्किल हो जाए द्वार बंद कर ले, बोल नहीं आने देंगे तुम तो यहाँ पर गीत तो गाती नहीं। तो ये मैया की बात मानकर नारायण मंदिर में गई, गई तो सही पर मन पर दूसरा नारायण बैठा हुआ, इनके नेत्रों में इनके मन में इनके प्राणों में तो श्याम सुंदर समा गए। इनमें महाराज इस प्रकार का एक विलक्षण आश्चर्यमय चमत्कार था। एक बार ये जिसकी ओर अपने उस मन से जो खींचने वाला मन देख लेते, निन्ने से बच्चे हैं तो क्या हुआ, फिर वो अपने जीवन में इस जीवन का नहीं रह जाता, सब कुछ भूल जाता है। यही प्राणों को सदा के लिए लेने वाली उनकी दृष्टि होती है। तो ये चली गई मंदिर में नारायण के, पर इनके तन में, इनके मन में, इनके नेत्रों में तो श्री श्याम सुंदर बसे छाए हुए हैं। ये वहां नारायण का गीत गाने लगी और नारायण का गीत गाते गाते भूल कर कन्हैया के बाल लीला गाने लगी। यशोदा ने सोचा ये क्या कर रही है, भली हो गई मालूम होता है। जो यशोदा बोले ये क्या कर रही हो तुम, अरे नारायण का भजन गाने आई थी कि लाला का गीत गाने आई थी, ये लाला के लिए तो जागरण है ना आज, तुम नारायण के गीत का। बोले हाँ मैया गा रही, मैया को भेजा, मैया फिर चली गई लाला के पास, ये गाने लगी, गाते गाते नारायण का नाम तो भूल गई थी। अब अपनी दशा का वर्णन करने लगी, कहा मेरे दिन में आई थी और मैंने आकर के ये खेल रहा था, खेलते हुए इसको देखा तो तब से मेरी क्या दशा हो गई है तुझे मैं सुनाऊं। वो उसी की भाषा में सुनी,
वो गोपी अपनी स्थिति सुना रही है, वो क्या उसके मन की पंक्ति सुनी।
जसुदा को ओ नंदन
उद्या
सखी उड़ो अपने कहूँ दिसी भयो जाओ जो गुल जाए सम तुला रही जो गुल जाए तुलत सुने अति भारोदी जैसे बूंद परत बारिधि जैसे बूंद परत बारिधि गुण ज्ञान हमारो क्यों गुण ज्ञान हमारो मैं देखो हो उन माह की वे मोही महिया परतन देह संभार संभारोरी ये हो उन माह की ये वे मोहि महिया परतन देह संभारोरी करुणे बीज की बीज माही तरु करुणे बीज की बीज माह तरु दूने एकन न्यारो दूने एकन न्यारो जल थल मधु कानन धर भीतर जहलो दृष्टि पसारो जल थल मधु कानन धर भीतर जहलो दृष्टि पसारो तितही तित